काफी डाल देते हैं आप शिद्दत।
बिल्कुल कर दीजिए प्लीज। वकफा वसलामुन अस्तफा अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में बुध के दिन जो होती है रात के वक्त अंडर दीन एसेंशियल्स फॉर मेंस प्रोग्राम, तो इस वाली क्लास के अंदर हम हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब ईमान और कुफर कुरान की रोशनी में से पढ़ते हैं। तो इसमें हम सफा नंबर 65 के ऊपर थे, 65 आखिरी क्लास में, बल्कि जो जुमे का दर्स था, क्योंकि उसमें भी हम इस किताब में से पढ़ते हैं और बुध की क्लास में भी पढ़ते हैं। तो जो आखिरी बात हमने पढ़ी थी, जुमे का दर्स हुआ नहीं था एक्चुअली। हाँ, तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ, जुमे को तो मुझे याद नहीं पड़ा कि दर्स में ये चीज़ें पढ़ी थी, तो क्लास में ही पढ़ी थी। तो वो ये था, यानी उनवान ये चल रहा था कि एहतियात का दूसरा पहलू, यानी किसी को काफिर ना करार देना, ये यानी ये एहतियात का पहला पहलू था, या पहला एंगल था एहतियात का, पहला रुख था एहतियात का। क्योंकि किसी मुसलमान को काफिर करार देना जो है, ये बहुत ही ज्यादा संगीन मामला है, और इसका असर जो है वो करार देने वाले के ऊपर इंतहाई संगीन हो सकता है, कि अगर जिसको इसने काफिर करार दिया है वो हकीकत में काफिर नहीं है, तो उसका कुफर जो है इसके ऊपर पलटता है। तो लेकिन इसका फिर फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, इसका जो दूसरा पहलू हजरत ने बयान किया ना, वो भी बहुत ज्यादा यानी एहतियात तलब है, बहुत ज्यादा फिक्र तलब है। तो उसमें फिर हमने आखिरी बात ये करी थी कि यानी ये जो ऐसे लोगों को मुसलमान करार दे देना जिनके अकायद जो है वो बहुत ही खुल करके इस्लाम के खिलाफ हैं, बुनियादी अकायद के खिलाफ हैं, तो ये आज के ज़माने के अंदर जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, बल्कि हो गई है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो आज से कुछ सालों पहले दुनिया ने देखी थी, ठीक है। तो वो हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। अब दूसरी ये कि यानी ये जो जो जमाना है, इसकी ये वाली खासियत है, यानी मुसलमान को काफिर करार देने वाला जो दौर था ना, वो ऐसा लगता है कि वो दौर तो गुजर गया, ठीक है ना, तकरीबन गुजर गया। यानी अब ऐसे मामलात नजर नहीं आते कि किसी मुसलमान को कोई काफिर करार दे, ठीक है, सिवाय वो लोग ऐसा काम करते हैं जो कि जुहला कहलाते हैं, या बहुत ही जो है ना वो अहले बिदत और अहले यानी हवा कहलाते हैं, ऐसे लोग जो कि किसी मुसलमान को काफिर करा देने की जुर्रत करते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं कि जो कि अच्छे खासे इम्यून किस्म के लोग होते हैं, कि उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता, यानी उनको कोई उनके ऊपर कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जा सकता, उनको जो है वो पुलिस जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा नहीं चला जा सकता, क्योंकि वो लोग जो है ना वो मुआशरे के अंदर एक मॉब जस्टिस, एक मॉब जस्टिस की हैसियत रखते हैं। मॉब जस्टिस का मतलब क्या होता है कि उनकी ऐसी बदमाशी, जिसको हम अपने अपने मुआशरे में कहते हैं बदमाशी, ठीक है, तो वो ऐसे बदमाश सिफत किस्म के लोग होते हैं कि वो अगर किसी को काफिर काफिर करार दे देना, तो अब उनको कोई छू नहीं सकता, दे आर अनटचेबल्स, दे आर अनटचेबल्स। वो एक ऐसी यानी क्या कहते हैं उसको, और क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ, बदमाशी से ज्यादा और बेहतर लफ्ज जहन में नहीं आ रहा, ठीक है, आप क्या आ रहा हो तो आप बता दीजिए, ठीक है। अंग्रेजी में उसको मॉब जस्टिस भी कहते हैं, एक तरह की बदमाशी ही होती है ना, आपने बस अपने भोंस में आकर के आपने किसी को मार दिया, कोई आप कुछ आपको आपका बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी, ठीक है ना। उसी तरीके से रिलीजियस पावर्स भी ऐसी होती हैं कि जो कि किसी के आकर के अगर दर पे हो जाए ना, तो फिर कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उलमाए हक तो वैसे भी ये काम नहीं करते, लेकिन जो हमारे यानी जो मदारिस अरबिया सही जो अकीदे वाले मदारिस अरबिया हैं, तो वो आज ऐसा करने की जुर्रत भी नहीं कर सकते, ऐसा करने की जुर्रत भी नहीं कर सकते, क्योंकि यानी उनको जो है ना फिर बहुत ही सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का, यानी बहुत ही मुश्किल नतायज का सामना करना पड़ जाएगा, इस वजह से आजकल ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी के किसी को काफिर करार दे दिया जाए, ठीक है, तो वो वाला मसला जो है ना वो आज के दौर के अंदर तकरीबन नापैद हो चुका है, नॉन एग्जिस्टेंट हो चुका है कि किसी मुसलमान को काफिर करार दिया जाए, ठीक है ना। अब मैंने इतनी देर तक जो चीज समझाई है वो समझ में आई है, किसी को नहीं समझ में आई है तो पूछ ले, मैं अपने अब सोच विचार करके उनको नोट्स बना करके तो आपके सामने बैठते नहीं है, तो इस वजह से जो आता है वो बोल देते हैं, अब पता नहीं अगर आपको समझ में ही ना आया हो तो फिर आगे बढ़ने का फायदा, किसी को ना समझ में आया हो कि क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप असल में, तो पूछ लें बता दें, ठीक है, सही है, मतलब मैं आपको डाउट नहीं कर रहा, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन की एबिलिटी को डाउट कर रहा हूँ, क्या मैं सही तरह समझा पाया भी हूँ कि नहीं पाया, ठीक है, तो डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस के लिए, पता नहीं क्या समझते हैं हम लोगों को, नहीं अपनी भाई मुझे बात करनी नहीं आती अच्छी तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहसास है, ठीक है, तो ये मतलब अगर आपसे किसी से पूछ रहे हैं कि आप एक्सप्लेन करें इस बात को तो कर लेंगे एक्सप्लेन, कि आज के दौर में किसी मुसलमान को काफिर करार देना ये तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हो चुका है, ठीक है, आज के दौर में ये नॉन एग्जिस्टेंट हो चुका है, ठीक है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सही है, कादियानियों को जो काफिर करार दिया गया है ना वो मौलवियों ने ऐसे करार नहीं दिया है, उसके लिए पूरी की पूरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कितना ज्यादा परसू किया गया, कितने दलाइल उनके पास सामने रखे गए, उनको जो है वो यानी बिल्कुल ही वो जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो लोग थे वो यानी इंतहाई सेक्युलर किस्म के और इंतहाई यानी नॉन प्रैक्टिसिंग किस्म के मुसलमान थे ना वो लोग, ठीक है ना, लेकिन उलमा ने इतनी मेहनत करी, ऐसे लोगों को भी कन्विंस किया, बाकायदा जरा हुई, तादील हुई, कादियानियों को भी बुलाया गया, फिर जो है वो उलमा को भी जो है वो सामने रखा गया, लोगों ने क्वेश्चंस किए, काउंटर क्वेश्चंस हुए, राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि एक बिल्कुल ही जो है वो यानी सेक्युलर किस्म की शख्सियत होता है, उस अटॉर्नी जनरल ने जो है वो उलमा से सवालात किए और उलमा ने जो है वो खूब तहकीकात कर करके उनके जवाब दिए, इतने जो है ना वो जतन करने के बाद, इतने जतन करने के बाद कानूनी एतबार से कादियानियों को काफिर करा दिया गया है, यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, बात समझ में आ रही है, कितना मुश्किल काम था कादियानियों को काफिर करार दिलवाना, राइट, अकेले किसी ने काफिर करार देने के जो है वो उसके उसको कोई घास भी नहीं डाल रहा था इस बात को कि वो मौलवी साहब ने काफिर करार दे दिया और जो है वो दारुल इफ्ता ने काफिर करार दे दिया, तो पूरी स्टेट मशीनरी को साथ लेकर के ये वाला काम किया गया, क्यों काम किया गया ये वाला, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो ये मुमकिन ही नहीं हो रहा था, ये हो ही नहीं रहा था, आपको पता है ना 1953 में पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनने के सिर्फ 5 साल के बाद जब कादियानियों के खिलाफ जो जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, है ना, सड़क के ऊपर जो मुजाहरे शुरू हुए थे, तो लाहौर के सड़कों के ऊपर 10,000 मुसलमान, 10,000 मुसलमान शहीद हुआ था, 10,000 मुसलमान, किस जगह पे, किसी गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर नहीं, किसी काफिर मुल्क के अंदर नहीं, उस मुल्क के अंदर जिसको के इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, ठीक है, तो ये जो ये है ना कि जी हमारे मदारिस जो हैं वो हमारे उलमा जो हैं वो सड़कों पे निकल आएंगे और सड़कों पे निकल आने के बाद जो है वो कानून साजी हो जाएगी, कोई नहीं कानून साजी होगी, 10,000 बंदा आराम से मारा जा सकता है, 10,000 बंदा आराम से मारा जा सकता है, मामूली मामूली नंबर है ये 10,000, राइट, तो ये बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो एक सूडो किस्म का एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है, मैंने कि मौलवी लोग तो दूसरों को काफिर करार दे देते हैं, ये जो मौलवी लोग दूसरों को काफिर करार दे देते हैं, का जो ये प्रोपेगेंडा है ना, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि मौलवी की तो जान और माल का मसला पड़ जाता है अगर वो किसी को काफिर करार देने की कोशिश कर ले। और वो जो मौलवी करार देते हैं, वो मौलवी तो बदमाश किस्म के मौलवी होते हैं, जिनको कोई कुछ ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, जिनको कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो जो है वो काफिर करार देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बैकिंग के ऊपर जो है उसी किस्म के लोग होते हैं। अहले हक मौलवी तो करार दे ही नहीं सकते, ठीक है जी। कोई सवाल? अच्छा, तो फिर इस दौर में कौन सा वाला मसला है, इस दौर में कौन सा वाला मसला इस वक्त जो है वो एक अजदहे की तरीके से एक बहुत बड़ा यानी प्रॉब्लम बनकर जो खड़ा हुआ है, वो कौन सा वाला मसला है फिर? वो ये दूसरा पहलू है, वो ये दूसरा पहलू है, ये दूसरी साइड ऑफ द कॉइन है, जो कि इस जमाने का मसला है। वो क्या मसला है ये आप बता दें, तो कुछ मुझे भी इत्मीनान हो कि हाँ भाई समझ रहे हैं। क्या है दूसरा पहलू, क्या है इस दौर का मसला जी? इस दौर का क्या मसला है? आप बताएं, नहीं हम आगे नहीं चलेंगे, ठीक है, आप फिक्र ना करें, हम आगे नहीं जाएंगे जब तक आप सही जवाब ना दे दें। प्लूरलिज्म से तो किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी, तो आप वो बताएं ना जो आपसे पूछा जा रहा है, जो इतनी सारी वक्त लगा करके सारी ने कहा है। इस दौर में जो बड़ा मसला खड़ा हुआ है वो ये है कि कुफर करने वालों को भी मुसलमान करार दे, जज़ाकुमुल्लाह कसीर, ये है इस दौर का मसला। सबको मुसलमान करार दें, काफिर को मुसलमान कहें, ठीक है ना, मुसलमान को काफिर कहना इस दौर का मसला नहीं है, ये पुराने दौर का मसला था, ठीक है ना, ये पुराने दौर का मसला था। इस दौर का मसला ये है काफिर को मुसलमान कहना, जैसे कादियानी को मुसलमान कहना। आपका क्या ख्याल है, आपके पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कादियानी को काफिर करार दे दिया, तो क्या आपके जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो अवामुन नास है, क्या वो अवामुन नास भी इनको काफिर कह रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके स्कूल कॉलेज एजुकेटेड जो के आपकी पॉपुलेशन के 95% अगर नहीं है तो 90% तो कम से कम है, राइट, रोशन ख्याल मुसलमान, राइट, वो कोई कादियानी को काफिर करार नहीं देता, राइट। ये खत्म नबूवत के जो मेहनत करने वाले उलमा हैं और उलमा के जो फॉलोअर्स हैं ना, उनकी तादाद वो आटे में नमक के बराबर है, आपको पता है ना, नहीं पता तो आज पर सुन लीजिए इस बात, आटे में नमक के बराबर है ऐसे लोगों की तादाद जो खत्म नबूवत की मेहनत करते हैं, उलमा और मदारिस की बात मान करके जो है वो अपना जहन बनाते हैं, इनकी तादाद बहुत कम है। मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो लाखों लोग जमा हो गए ना, ये आपके 25 करोड़ आवाम के अंदर इनकी इनकी तादाद जो है ना, ये कोई हैसियत नहीं रखती, ठीक है ना, बहुत कम तादाद है जो कि जमा तो हो गए एक जलसे की खातिर, लेकिन आवाम के ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर इनकी ज्यादा हैसियत नहीं है, ठीक है ना। जो साइलेंट मेजोरिटी है ना, साइलेंट मेजोरिटी, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो इस वजह से वो उनका यही सवाल होता है, भाई वो जब अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है, जब वो इतने अच्छे लोग हैं, जब इतने अच्छे मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं और ये हैं और वो हैं, तो क्या मुसीबत पड़ी हुई है आपको कि आप उनको काफिर करार दे रहे हैं? वो मुसलमान है भाई, कादियानी मुसलमान है भाई, ठीक है ना। तुमको क्यों, तुम कौन से मुसल इस्लाम के ठेकेदार बने फिरते हो, तुम्हें किसने जो है ये अथॉरिटी दी है कि तुम किसी को जो है वो काफिर करार दे दो? ये है अवाम उन्नास के अंदर, ये है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है काफिर को मुसलमान करार दे, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में इन्होंने जो एक लफ्ज में माशाल्लाह जवाब दे दिया था, तो इसको प्लूरलिज्म भी कहते हैं और इसको पेरेनियलिज्म भी कहते हैं। इसी को जो है वो एब्राहमिक फेथ टाइप की चीजें भी, इस किस्म के नारे यानी सारी एक ही मानी रखते हैं, पीस फॉर ऑल एंड हेट फॉर नन, ठीक है ना भाई। वी ऑल्सो से हेट फॉर नन, वी ऑल्सो से हेट फॉर नन। नन का असल में क्या है, नन जो है ना ये एक अब्रीविएशन है, नो वन, राइट, नन इज एक्चुअली नो वन। तो पीस फॉर ऑल एंड हेट फॉर नन, यही इस्लाम है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली आपने जो लिखा है ये सही नहीं है, ये तो हम भी कहते हैं पीस फॉर ऑल एंड हेट फॉर नन, लेकिन हेट फॉर नन यानी वी डोंट हेट एनी वन बट वी हेट कुफर एंड काफिर. वी डोंट हेट द काफिर, वी हेट कुफर एंड वी हेट द काफिरी. वी हेट गुनाह, वी डोंट हेट गुनाहगार. राइट, वी डोंट हेट गुनाहगार बट वी डू हेट गुनाह. ठीक है ना, तो अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसका पता होना और इसका जो है वो लोगों को इल्म होना ताकि वो उसके शर से बच सकें और गलत फहमी का शिकार होकर के कोई अपने ईमान का सौदा ना कर बैठे उसके साथ, तो ये बात जो है वो ईमान के लिए जरूरी है. ठीक है, क्या लिखा है उन्होंने, पार्लियामेंट में रूल पास होने से क्या फायदा हुआ है जब 95% अवाम मानती ही नहीं है. फायदा ये हुआ है कि जब कोई उसके खिलाफ कोई मेजर किस्म का फितना खड़ा करता है ना, तो यू कैन ड्रैग हिम टू कोर्ट, यू कैन ड्रैग हिम टू कोर्ट. ठीक है, आप उसको कोर्ट में ला सकते हैं और आप कोर्ट के अंदर जो है ना उसके खिलाफ मुकदमा लड़ सकते हैं और शोर मचा सकते हैं और जो है वो चंद लोगों को बात समझ में आ सकती है, चंद लोगों को बात समझ में आ सकती है. ठीक है, अगर ऊपर से जो कानून साजी है वो भी इसके खिलाफ हो जाए ना, अगर कानून साजी भी जो है वो इसके खिलाफ हो जाए कि वहां पर भी कह दिया जाए पार्लियामेंट में और आपके कानून के अंदर कि जी कादियानी कोई कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, तो फिर जो है ना आपके हाथ में ये वाला ऑप्शन भी बाकी नहीं रहता. और जो 5% है ना मानने वाले, जो 5% इनको नॉन मुस्लिम मानने वाले हैं, तो उनका ना सिर्फ ये कि उनका जीना जो है वो हराम हो जाएगा, बल्कि उनकी भी अगली नस्लें जो है ना वो इस अकीदे के ऊपर कायम नहीं रह सकेंगी. इवन 5% जो उलमा को मानने वाले हैं ना, उनकी भी जिंदगी जो है वो जहन्नम बन जाएगी अगर ऊपर से कानून साजी इसके खिलाफ हो गई. और फिर ना सिर्फ ये कि उनकी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी, लेकिन वो तो चलो कुर्बानी दे लेंगे, इस्लाम के ऊपर कायम रह लेंगे, अकायद को अपने जो है वो दुरुस्त रख लेंगे, उनकी अगली नस्लें नहीं रह सकेंगी इसके ऊपर. तो अगली नस्ल जब आएगी ना, तो ये 5% जो है ना ये रिड्यूस होकर के शायद 2% रह जाए या 1% रह जाए. ठीक है, तो इस वजह से ये मेहनत जो है ये अपनी हैसियत रखती है और ये मेहनत हो रही है. ये 5% तो हम ऐसे ही अंदाजे में अंदाजे कर रहे हैं ना, 5% नहीं है 10% होगी. तो अगर ये मेहनत चलती रहेगी तो ग्रेजुअली 1%, 2%, 3% इसके अंदर ऐड भी होते रहेंगे. और अगर इसको तर्क कर दिया जाएगा तो फिर ये बढ़ने की बजाय ये नंबर मजीद कम होता चला जाए. ठीक है, तो ये है एहतियात का दूसरा पहलू. और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमें जिस चैलेंज का सामना है वो इस दूसरे पहलू के चैलेंज का सामना है. ठीक है, आगे चलें. फवायद जरूरिया के अंदर हजरत लिखते हैं कि मनकूल अज रिसाला वसूल अफकार के अबनाए जमाना की अफरात तफरीत और कुफर इस्लाम के मामले में बे एहतियाती देख कर, अबनाए जमाना यानी जो जमाने का जो 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 कंस्ट्रक्शन हुई भी है आजकल जमाने की, जो जो उन अतवार आपको नजर आते हैं, तो उसमें जो अफरात और तफरीत है यानी एक्सेसेस, ठीक है ना, अफराद का मतलब होता है कि ज्यादती में हद से बढ़ जाना, और तफरीद का मतलब होता है कि किसी चीज को एतदाल से कम कर देना, उसको तफरीद कहते हैं. ठीक है, तो हम या तो अफराद का शिकार है या हम तफरीद का शिकार है. एतदाल हमें पता ही नहीं कि एतदाल क्या चीज होती है. ठीक है, तो दीन तो एतदाल का नाम है ना, लेकिन हम जो है ना अपने अफराद को एतदाल का नाम दे देते हैं या हम अपनी तफरीद को एतदाल का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं होता. बेइल्मी के अंदर तो इंसान जो चाहे कहे, राइट, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई. तो अबनाए जमाना की अफरात व तफरीत और कुफर इस्लाम के मुकाबले में के मामले में बे एहतियाती देकर, यानी जो हमारे अवाम के अंदर बे एहतियाती पाई जाती है, तो इसको देखकर आज से 30 साल कबल यानी जब हजरत ने रिसाला लिखा था उससे भी 30 साल पहले 1351 हिजरी में एहकर ने एक सवाल के जवाब में मुफस्सल मकाला लिखा था. क्योंकि मुफ्ती थे ना, तो इनके पास जो है वो सवाल आते थे, इस्तफ्ता आते थे, तो ये जवाब फतवा लिखा करते थे. कभी जो है वो जवाब इतना तफसीली हो जाता है कि पूरा का पूरा वो एक यानी मकाला बन जाता है, जो बनाम वसूल अफकार इला उसूल अकफार शाया भी हो चुका है. यानी अफकार की वसूली एला किसी को काफिर करार देने के उसूल की तरफ, ठीक है, यानी इस उसूल के ऊपर जो है ना वो अफकार को जो है वो जमा करना, उन्होंने इस मुकाले के अंदर उसको जमा किया, इस जगह भी उसका खुलासा लिख देना मुनासिब मालूम होता है, यानी अपने रिसाले का खुलासा यहाँ पे लिखते हैं, वो ये है हकीकत ये है कि किसी मुसलमान को काफिर या किसी काफिर को मुसलमान कहना दोनों जानिब से नहायत ही सख्त मामला है। कुरान करीम ने दोनों सूरतों पर शदीद नकीर फरमाई है। मुसलमान को काफिर कहने के मुताल्लिक इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिना, ए ईमान वालों, जब तुम अल्लाह के रास्ते रास्ते में सफर किया करो तो हर काम को तहकीक करके किया करो, तहकीक करके काम को किया करो, और ऐसे शख्स को जो तुम्हारे सामने अताअत जाहिर करे, ठीक है, यानी आकर के कहे लिमन अल्का इलैकुमुस्सलाम, तो उसको ऐसे ना कह दिया करो कि तू मुसलमान नहीं है, ठीक है, यानी तुम जो है वो मुसाफिर हो, मुसाफिर जब होगे तो फिर किसी गैर इलाके के अंदर तुम सफर करोगे ना, अपने घर में तो कोई बैठ करके सफर नहीं करता रहता, अपने शहर में तो कोई सफर नहीं करता रहता, तुम बाहर निकलोगे और बाहर के लोगों को तुम जानते नहीं हो, तो कोई शख्स तुम्हारे सामने आया और उसने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, क्या कह रहा है कि भी मैं मुसलमान हूं, तो तुम उसको ऐसे ही तो तुम कैसे मुसलमान हो सकते, ठीक है ना, उसकी शक्ल उसका हुलिया देख करके खाली उसको काफिर करार मत दे दो। तब तगुना अरद अल हयात दुनिया फइंद अल्लाह मगानिम कसीरा, क्योंकि खुदा के पास बहुत गनीमत के माल हैं, कज़ालिका कुंतुम मिन कबलू फमन अल्लाह अलैकुम फतबयनू इन अल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, तो पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, सो गौर करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की पूरी खबर रखते हैं, ठीक है, सो गौर करो, फतबय्यन यानी तुम तहकीक करो, तबय्यनों का मतलब क्या होता है, तुम तहकीक करो इस बात की कि क्या बज़ाहिर जो तुम्हें तुम्हारे ख्याल में वो मुसलमान नहीं है, तो क्या वाकई ऐसा है कि वो मुसलमान नहीं है, ठीक है, तो भाई एक वक्त था कि जब तुम्हें भी इल्म नहीं था, तुम भी जो है वो मुसलमान तो हो गए थे, लेकिन जैसे इस्लाम के तकाजे होते हैं वैसे जो है वो तुम भी पूरे नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से किसी को काफिर करा देने के अंदर तुम जल्दी ना करो, यानी जब तुम अव्वल मुसलमान हुए थे अगर तुम्हें भी यही कह दिया जाता कि तुम मुसलमान नहीं, तो तुम क्या करते उस वक्त, ठीक है। अच्छा, क्या इन्होंने लिखा था यहाँ पे, किसी ने मैसेज लिखा है कि सेइंग ए काफिर सच एज कादियानी दैट ही इज मुस्लिम इज आल्सो ए टाइप ऑफ कुफर बाय द पर्सन हु सेज इट, जी है तो ऐसा ही भाई, कादियानी को मुसलमान करार देने वाला, ठीक है। इस आयत से मालूम हुआ कि जो शख्स अपना इस्लाम जाहिर करे तो जब तक उसके कुफर की पूरी तहकीक ना हो जाए उसको काफिर कहना नाजायज और वबाले अजीम है, ठीक है, यानी ये वो मामला नहीं है कि गिल्टी अंटिल प्रोवन इनोसेंट, राइट, कोई मुसलमान आकर के आपसे कह रहा है, आप उसको नहीं जानते हैं, आप सफर में हैं, वो एक यानी अजनबी है, वो मुसाफिर है, वो आपके पास आ रहा है, आपको क्या पता उसके अहवाल का, ठीक है, तो आप उसको देख करके जो है वो कह दें कि नहीं तुम मुसलमान नहीं हो, तुम कैसे मुसलमान हो सकते हो, ठीक है ना, यानी इस बुनियाद पर कि भाई आपके इल्म में नहीं आया कि इस बस्ती के अंदर लोग मुसलमान हो चुके हैं, तो अब कोई उस बस्ती का बंदा आकर के आपसे कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो आपने कह दिया नहीं तुम कैसे मुसलमान हो सकते हो, मेरे तो इल्म में ये बात नहीं है कि इस बस्ती का कोई बंदा भी मुसलमान, भाई आपके इल्म में जो है वो एक एक बंदे के बारे में कैसे कंफर्म नॉलेज कैसे हो गई आपको, एक एक बंदे के बारे में, हो सकता है कोई बंदा मुसलमान हो गया हो, तो इस बुनियाद पर कि जस्ट बिकॉज यू हैवेंट हर्ड कि इस बस्ती के लोग मुसलमान हो चुके हैं, आपने किसी बंदे को गैर मुस्लिम कह दिया, या उसी तरीके से कोई और ऐसी कोई इंडिकेशन आपके सामने आ गई जो कि आपके आपको कोई कंफर्म नहीं है, तो कोई एक बंदा आपको आके कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, आप उसकी बुनियाद पर उसको गैर मुस्लिम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि आप उसको जानते नहीं है ना, तो अल्लाह ताला भी यही कह रहे हैं कि तुम तहकीक करो, मतलब भैया, ठीक है, तो दो दफा आता है फतबयन इस वाली आयत के अंदर, इस आयत से मालूम हुआ कि जो शख्स अपना इस्लाम जाहिर करे तो जब तक उसके कुफर की पूरी तहकीक ना हो जाए उसको काफिर कहना नाजायज और वबाल अजीम है। इसी तरह इसके मुकाबिल यानी किसी काफिर को मुसलमान कहने की ममानियत इस आयत में है जो अब आ रही है आगे। अतुरीदुना अन तहदु मन अवल्लल्लाहु वमन युद्लिलल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। ठीक है, तर्जुमा बनता है इसका कि अतुरीदुना क्या, हमजा इस्तफहामिया, क्या तुरीदुना तुम इरादा करते हो, तुम लोग इसका इरादा रखते हो, अन तहदु कि ऐसे लोगों को हिदायत करो। तहदू का लफ्ज हिदायत से, कि तुम हिदायत करो। मन अवल्लल्लाहु कि जिसको अल्लाह ताला ने गुमराही में डाल दिया, व मन युद्लिलल्लाहु और जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया, फलन तजिद लहु सबीला, तो अब वो हिदायत का कोई रास्ता नहीं पा सकता। जिसको अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया वो हिदायत का रास्ता नहीं पा सकता। अब इस तर्जुमे से क्या बात समझ में आती है आपको? नहीं समझ में आती बात, तफसीर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तफसीर जलालैन में अंतहदू की तफसीर ये है, यानी क्यों तर्जुमे से बात समझ में नहीं आती कि भाई अल्लाह ने गुमराह कर दिया किसी को तो वो हिदायत का कोई रास्ता नहीं पा सकता। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है बात, ठीक है ना, अल्लाह ने किसी को गुमराह कर दिया तो वो हिदायत का रास्ता नहीं पा सकता, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया वो हिदायत नहीं पा सकता। ठीक है, अल्लाह ने गुमराह किया तो किसी वजह से ही किया होगा ना भाई, ऐसे कुछ नहीं खामखा अल्लाह ताला जो है वो लेफ्ट एंड राइट किसी को खेल में जो है वो हिदायत दे दी, किसी को खेल में जो है वो गुमराह कर दिया। राइट, अल्लाह ताला तो किसी पे जुल्म नहीं करते, तो गुमराह कर दिया इससे बड़ा जो है वो उसके लिए बर्बादी और क्या हो सकती है, वो खामखा में अल्लाह ताला ने उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये क्या है फिर? अंतहदू कि तुम हिदायत दो उसको कि जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया। तो भाई अल्लाह ने जिसको गुमराह कर दिया तो तुम्हें क्या पता कि अल्लाह ने किसको गुमराह किया है? राइट, हमें क्या पता अल्लाह ताला ने किसको गुमराह किया है? अल्लाह ताला के किसी को गुमराह करने के बाद हमें जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बंदों कि मैंने इसको गुमराह कर दिया है, हमें तो नहीं पता चलता। अल्लाह ताला तो नहीं रिपोर्टिंग कर रहे होते कि मैंने इसको सजा दी है, मैंने इसको सजा नहीं दी है। तो फिर क्या मतलब है इस बात का? अंतहदु मन अदल्लाहु। ठीक है, तो तफसीर जलालैन में अंतहदु की तफसीर ये की है कि अई तउदूहुम मिन जुमलतिल मुहतदीन, यानी कुफार को अहले हिदायत शुमार कर, कुफार को अहले हिदायत शुमार कर। क्या मतलब? अंतहदु हिदायत दो, हिदायत दो का मतलब हमारी जो छोटी सी अकल है, छोटा सा इल्म है, तो उसके अंदर हम तो कहेंगे कि भाई यानी किसी को जो है वो दावत करना, दावत तो तबलीग करना, ठीक है ना, तो ये तो बात समझ में नहीं आती कि तुम जो काफिर है या जिसको अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया अब उसको जो है वो तुम वो हिदायत की तबलीग ना करो उसको। हमें क्या पता भाई अल्लाह ने गुमराह किया है या अल्लाह ताला ने जो है वो उसके लिए हिदायत के फैसले किए हैं, हमें क्या पता इस बात का? हमारा तो काम है कि हम जो है वो तबलीग करें, ये तो हमारी मेहनत है, हमारी जिम्मेदारी है, नबियों से हमने यही चीज़ तो विरासत में ली है। वमा अलैना इल्ल बलाग अल मुबीन। राइट, तो यानी एक बड़ी यानी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की स्टेटमेंट लिखती है, और उसको अगर आप इसकी गहराई में जाएं, उसके ऊपर क्वेश्चंस करें, उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चंस करें, तो तर्जुमे से बात समझ में ही नहीं आ सकती। ठीक है, तो फिर इसकी तफसीर क्या है? इसकी तफसीर बड़ी सादा सी है कि कुफार को अहले हिदायत शुमार करना। ठीक है, कुरान से ही इसकी तफसीर मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, और तफसीर कैसे की जाती है? सबसे पहले तफसीर कुरान मजीद से ही कुरान की जाती है ना। ठीक है, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, कि तुम जिसको पसंद करते हो ना तुम उसको हिदायत दे नहीं सकते, तुम उसको हिदायत नहीं दे सकते। जिसको तुम पसंद करते हो कि वो मुसलमान हो जाए, जिसको तुम चाहते हो कि वो मुसलमान हो जाए, तुम उसको हिदायत दे ही नहीं सकते। जब हम किसी को हिदायत दे ही नहीं सकते तो फिर अंतहदु मन अदल्लाह, कि तुम हिदायत दे दो उसको जिसको अल्लाह ने गुमराह किया। अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान मजीद के अंदर ही फरमा रहे हैं कि तुम तो हिदायत दे ही नहीं सकते, तो फिर यहां पे क्यों कह रहे हैं कि तुम हिदायत दे दो उस शख्स को जो जिसको अल्लाह ताला ने गुमराह किया? ठीक है, अगर क्या तुम ये इरादा रखते हो कि तुम्हें हिदायत दे दो, भाई हिदायत देना तो हमारे बस में ही नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि जो काफिर है, ठीक है ना, अब वो काफिर जो है वो अल्लाह की तौफीक की वजह से काफिर है, अल्लाह ताला ने उसको कुफ्र की तौफीक दी हुई है, यानी नेगेटिव तौफीक दी हुई है, तो अब तुम जो है ना वो उसको मुसलमान शुमार कर लो, डोंट कॉल काफिर ए मुस्लिम, सिंपली है, सिंपल एज दैट, डोंट कॉल काफिर ए मुस्लिम। तो सलफ सालेह सहाबा व ताबईन और मा बाद के अइमा मुज्तहिदीन ने इस बारे में बड़ी एहतियात से काम लेने की हिदायतें फरमाई हैं। हजरात मुतकल्लिमीन और फुकहा ने इस बाब को नहायत अहम और दुश्वार गुजार समझा है और इसमें दाखिल होने वालों के लिए बहुत ज्यादा तयक्कुज़ व बेदारी की तलकीन फरमाई है। तो कुफार को अहले हिदायत में शुमार करना, ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारे मुज्तहिदीन ने बहुत ज्यादा इसमें एहतियात से काम लिया है और इसकी हिदायतें फरमाई हैं। चुनांचे अल्लामा क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने शरा शिफा फसल तहकीकुल कौल फी अकफार मुतावीन, यानी तावील करने वालों को काफिर करार देने के अंदर जो जो बात की तहकीक है, तो उसमें इमाम अल हरमैन का ये कौल नकल फरमाया है, इदखालु काफिरन फिल मिल्लत अल इस्लामिया औ इखराजु मुस्लिमिन अनहा अजीमुन फिद दीन, ठीक है, यानी किसी काफिर को इस्लाम में दाखिल समझना या मुसलमान को इस्लाम से खारिज समझना, ये दोनों सख्त चीजें, ठीक है ना, दोनों सख्त चीजें हैं। हम तो खाली ये बात कर रहे हैं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसके अंदर पहली वाली सख्त चीज तो अब नॉन एग्जिस्टेंट तकरीबन हो गई है, और दूसरी वाली चीज जो है वो बड़ी, यानी बड़े जोर और शोर के साथ एग्जिस्टेंट, यानी काफिर को मुसलमान करार दें। लेकिन आजकल इसके बरअक्स ये दोनों मामले इस कदर सहल समझ लिए गए हैं कि कुफ्रो इस्लाम और ईमान और इर्तेदाद का कोई मेयार और उसूल ही नहीं रहा है, यानी बगैर मेयार के और बगैर उसूल के जो है ना वो काफिर को मुसलमान करार दे देना और मुसलमान को जो है वो काफिर करार दे देना, ये बगैर, यानी इल्म के बगैर मेयार के ये वाला काम चल रहा है। एक जमात है जिसने तकफीर बाजी को ही मशगला बना रखा है, ठीक है ना, आज से 50 साल पहले ये लोग जरा ज्यादा या तो प्रोमिनेंट होंगे, बल्कि आज से कुछ साल पहले भी बड़े शोर बड़े जुलूस भी निकलते थे और बड़े जो है ना वो इनकी, और ताकत है अभी भी ऐसे मॉब जस्टिस वाले और बदमाशी करने वाले जो हैं उनकी तो ताकत है अभी भी, ठीक है ना, लेकिन अब जो है ना बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल एन इस टाइम पर इवन वो लोग बड़े खामोश होकर बैठे हैं, ठीक है, जिन्होंने तकफीर बाजी को मशगला बना रखा था। जबकि ऑन दी अदर साइड जो वो बड़े जोर शोर के साथ बबांगे दहल जो है वो काम कर रहे हैं काफिर को मुसलमान करा देने, जरा सी खिलाफ शरा बल्कि खिलाफ तबा कोई बात सरजद हुई और उनकी तरफ से कुफर का फतवा लगा, ठीक है, अदना अदना फरी बातों पर, यानी फरूई बातें जो जो के उसूल से भी ताल्लुक नहीं रखती, फरुआत से ताल्लुक रखती हैं, उन बातों पर मुसलमानों को इस्लाम से खारिज कहने लगते हैं। उधर उनके मुकाबल दूसरी जमात है जिनके नजदीक इस्लाम और ईमान कोई हकीकत मुहसला नहीं रहती, यानी कोई डिस्टिंग्विशेबल हकीकत नहीं है ये ईमान और कुफर उनके नजदीक, बल्कि वो हर उस शख्स को मुसलमान कहते हैं जो मुसलमान होने का दावा करे, ख्वाह तमाम कुरान और हदीस और अहकाम इस्लामिया का इनकार और तौहीन करता रहे। उनके नजदीक वो क्यों ये बात करते हैं, क्यों करते हैं ऐसी बात कि जो कुरान हदीस और अहकाम इस्लामिया का इनकार कर रहा है और तौहीन कर रहा है उसको भी जो है वो ठंडे पेट, की उर्दू का एक मुहावरा है ठंडे पेट, नहीं सब चलता है, डोंट वरी, वो लाओ जी आओ पिया जी वो पाओ जी ओ जी आओ जरा खेल कूद करें जी, और जरा जरा हंसी मजाक और जरा कुछ लतीफे शतीफे सुनाएं जी, यानी हर एक को गले लगा लिया, हर एक को जो है ना वो अपना उसके साथ थोड़ी देर में बेतकल्लुफ होकर के फिर उसके बाद जो है वो हंसी मजाक और ये सब कुछ चल रहा है भाई, राइट, नथिंग मैटर्स, कोई चीज संजीदा नहीं है, कोई चीज जो है वो ऐसी नहीं है उनके नजदीक कि जो है ना जरा सा डिस्टेंस रखने के लिए जो है वो क्वालिफाई कर सके, सब चलता है, ठीक है। तो उन लोगों की बात कर रहे हैं कि वो हर उस शख्स को मुसलमान कहते हैं जो मुसलमान होने का दावा करे, ख्वाह तमाम कुरान हदीस और अहकाम इस्लामिया का इनकार और तौहीन करता रहे। उनके नजदीक इस्लाम के मफहूम में हर किस्म का कुफर खप सकता है। इस्लाम के मफहूम में हर किस्म का कुफर खप सकता है, अकोमोडेट हो सकता है, ठीक है। उन्होंने हिंदुओं और दूसरे मजाहिब बातिला की तरह इस्लाम को भी महज एक कौमी लकब बना दिया है, कौमी लकब, नेशनलिस्टिक स्लोगन कहेंगे इसको अंग्रेजी में, राइट, नेशनलिस्टिक स्लोगन, इस्लाम बस है, हम सब मुसलमान हैं और सब सेट है, ठीक है, एक कौमी लकब बना दिया है कि अकायद जो चाहे रखे, अकवाल व आमाल में जिस तरह चाहे आजाद रहे, वो बहरहाल मुसलमान है, और उसको अपने नजदीक वुसअत ख्याल कहते हैं। वुसअत ख्याल, जी हम तो बड़े वसीउ नजर हैं, वी आर वेरी, यानी क्या कहते हैं, खुले दिल हैं हम, वसीउल ख्याल, और वुसअत हौसला से ताबीर करते हैं कि बड़ा हमारा बड़ा हौसला है, हम तंग दिल नहीं हैं, हम जो है ना वो दकियानूस नहीं हैं, और हम फंडामेंटलिस्ट तो आप आजकल नहीं कहते हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं हम तो जी, बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, रोशन ख्याल हैं, राइट, यानी बड़ा इसको जो है ना वो तहसीन के साथ, बड़ी तहमीद के साथ और तहसीन के साथ इस बात को लेके चलते हैं कि जी ये तो बड़ी अच्छी बात है जो कि हम करते। लेकिन मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह, ये फकीर बेतदबीर नहीं, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह के अल्फाज पढ़ रहे हैं ना आपके सामने, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि लेकिन इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुजरवी और अफरात और तफरीद के दोनों पहलुओं से सख्त बेजार है, ठीक है, यानी कुरान भी और नबी अलैहिस्सलाम के अकवाल से भी हमें पता चलता है दोनों पहलुओं से सख्त बेजार है। इस्लाम ने अपने पैरुओं के लिए एक आसमानी कानून पेश किया है, जो शख्स उसको ठंडे दिल से तस्लीम करे और कोई तंगी अपने दिल में उसके मानने से महसूस ना करे वो मुसलमान है। अपने दिल में तंगी महसूस ना करे उसको मानने से, अमल करने की बात नहीं हो रही है, मानने की बात हो रही है। अमल करने में तंगी होती है, तकलीफ होती है, हम कमजोर हैं, हमसे अमल होता भी है तो बड़ी जो है वो मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है, भाई वो अमल की बात हो रही है, यहाँ पर अमल की बात नहीं हो रही, यहाँ मानने की बात हो रही है, सही को सही समझना, गलत को गलत समझना, ठीक है ना। तो अगर कोई गलत को सही और सही को गलत समझता है वो फिर इसमें दाखिल नहीं है, ठीक है। और जो इस कानून इलाही के किसी कतई हुक्म का इनकार कर बैठे, कतई हुक्म, ये सब हम पीछे तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, हर हुक्म की बात नहीं हो रही, कतई हुक्म की बात हो रही है, तो ऐसी किसी हुक्म का इनकार कर बैठे वो बिला शुबा व बिला तरद दायरा इस्लाम से खारिज है, उसके दायरा इस्लाम में दाखिल रखने से इस्लाम बेजार है, इस्लाम बेजार है, यानी इस्लाम डज नॉट, इज नॉट इंटरेस्टेड, तो कहते हैं इस्लाम इज नॉट इंटरेस्टेड, इस्लाम कोई आदमी का नाम नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, राइट, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसका ये दीन है वो इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे शख्स के अंदर, और नबी अलैहिस्सलाम इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे शख्स के अंदर, ठीक है, कि वो जो है वो मुसलमान करार पाए, और उसके जरिए इस्लामी बरादरी की मर्दुम शुमारी बढ़ाने से इस्लाम और मुसलमानों को गैरत, यानी हमारे नंबर्स बढ़ जाएंगे, मर्दुम शुमारी में हमारी तादाद बढ़ जाएगी, तो मुसलमान जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी नेशन करार पा जाएंगे, तो चलो जी सबको मुसलमान, सबको मुसलमान, सबको मुसलमान, यानी करार देना शुरू कर दो, करार देना उनको मुसलमान जो है वो गलमानी पढ़ाओ उनको, दावत तो तभी ना था, बल्कि बस उनको करार दे दो कि ये सब मुसलमान है, तो इससे मर्दुम शुमारी शुमारी बढ़ जाएंगे ना, आपका सेंसस के नंबर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, तो इससे इस्लाम और मुसलमानों को गैरत है, यानी ये हमारी गैरत के खिलाफ है, हम, और जो गैरतमंद मुसलमान है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उन चंद लोगों के दाखिले इस्लाम मानने से हजारों मुसलमानों के खारिज अज इस्लाम हो जाने का कवी अंदेशा है, जैसा कि बहुत दफा इसका तजुर्बा और मुशाहिदा हो चुका है, ठीक है ना। अब इल्म हासिल करना नहीं है, ना उसके लिए हमने वक्त निकालना है, ना इल्म वालों के पास जाके हमें सीखना है, क्योंकि उसमें हमारी बेइज्जती होती है और हम जो है वो उनकी शक्ल को पसंद नहीं करते, तो इस वजह से हमें ये बात पता ही नहीं है कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके फॉलोअर जिनको कि हम बहुत यानी हमसे मुराद अल्हम्दुलिल्लाह हम बताते खुद तो नहीं, लेकिन बहुत बहुत बड़ी तादाद लोगों की, जो कि क्या मुसीबत है, क्यों उनको काफिर करार दे देने वाले लोग, राइट, जो ऐसी बातें करते हैं, उनको ये बात पता ही नहीं है कि इसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और इसके बाद में आने वाले जो इसके खुलाफा वगैरह हैं, इन्होंने साफ अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जो मिर्जा को आखिरी ये नबी नहीं मानता, जो मिर्जा को नबी नहीं मानता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो अब जितने मुसलमान हैं जो कि इसको आखिरी यानी इसको नबी नहीं मानते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप इन लोगों को सही मानना शुरू कर दें तो फिर तो सारे के सारे इसके कॉल के मुताबिक काफिर हो गए, राइट, सारे मुसलमान जो है वो काफिर हो गए। अब ये बात किसी को पता ही नहीं, ना पता करने की जो है वो फिक्र है, ना कोई कोशिश है, बस वही रोशन ख्याली और वुसत हौसला, यानी बेसिकली ना यही एक मसला है, वुसत ख्याली और वुसत हौसला, ब्रॉड माइंडेडनेस, रोशन ख्याली, यही सारी चीजें खाली, पता वता कुछ है नहीं, ना पता करने की कोई कोशिश है, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है ये बड़ा बड़ा अहम पैराग्राफ है, ये वन ऑफ दोज क्रीम्स ऑफ दिस बुक, इस पैराग्राफ को कहा जा सकता है, ठीक है। टाइम हो चुका है, किसी को अगर कोई सवाल पूछना हो तो अगला उनवान शुरू करने से पहले, यानी अगला उनवान शुरू करने की बजाय जो है वो यहाँ पे आज की क्लास रोक लेते हैं, क्योंकि वक्त जो है वो कम हो चुका है। कोई सवाल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे अपनी क्लास खास करते हैं, इंशाल्लाह परसों यानी जुमे के दिन जो है वो इस दर्स को जारी रखते हुए जुमे की मजलिस के अंदर फिर बात करेंगे। वाकुर दावा अनिल हमदुल्ला।